नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में मांग के मुकाबले कम आपूर्ति के चलते टमाटर का खुदरा भाव बढ़कर 110 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया। सब्जियों के एक प्रमुख कारोबारी संगठन ने मंगलवार को ये जानकारी दी। इंदौर की देवी अहल्याबाई होलकर सब्जी मंडी के कारोबारी संघ के अध्यक्ष सुंदर दास माखेजा ने पीटीआई भाषा को बताया कि इन दिनों मंडी में केवल महाराष्ट्र से टमाटर की आपूर्ति हो रही है, जबकि राजस्थान में बारिश के चलते टमाटर की फसल खराब होने के चलते वहां से माल आना बंद हो गया है। उन्होंने बताया कि मांग के मुकाबले कम आपूर्ति के चलते टमाटर के थोक भाव में 70 से 80 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गए हैं। वहीं खुदरा बाजार में टमाटर 110 रुपए प्रति किलोग्राम के ऊंचे भाव तक बिक रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि बैंकों में ग्राहकों को मिलने वाली सेवाओं को और बेहतर बनाने समेत संचालन व्यवस्था में सुधार लाना वित्तीय संस्थानों के लिए पहली प्राथमिकता है और वह इस पर काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ग्राहकों के लिए बैंक से जुड़ी शिकायतों के निपटान के लिए CMS पोर्टल समेत कई कदम उठाए गए। कुछ खामियां हैं जिनमें सुधार के लिए बैंक प्रबंधन को ध्यान देना होगा। दास ने यहां RBI मुख्यालय में PTI भाषा से विशेष बातचीत में कहा, बैंक क्षेत्र में गवर्नेंस के स्तर पर और सुधार लाने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि गवर्नेंस ठीक ठाक नहीं है, संचालन व्यवस्था अब भी टिकाऊ और भरोसेमंद है, लेकिन इसमें और सुधार भी लाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा, इसका मतलब है कि जहां जहां जो कमियां हैं उन पर ध्यान देना होगा। हमें जहां कमियां नजर आती हैं हम उनके बारे में बैंकों को बताते हैं और मुझे खुशी है कि बैंक इस दिशा में अच्छी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। गवर्नेंस के अंतर्गत जोखिम प्रबंधन, अनुपालन से जुड़े कार्य, आंतरिक ऑडिट, निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता, ये सब ऐसी चीजें हैं जिनमें हमेशा सुधार की गुंजाइश रहती है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि पिछले 9 वर्षों में किए गए मोदी सरकार के विकास कार्यों के तहत भारत का सड़क नेटवर्क 59% बढ़कर दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच गया। गडकरी ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि आज के समय में देश का सड़क नेटवर्क करीब 1,45,240 किलोमीटर है, जबकि वित्त वर्ष 2013-14 में ये सिर्फ 91,287 किलोमीटर ही था। इस तरह देश के सड़क नेटवर्क में पिछले 9 वर्षों के दौरान 59% की उच्च वृद्धि हुई है। उन्होंने मोदी सरकार के 9 वर्षों की उपलब्धियों पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि आज भारत का सड़क नेटवर्क अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरे स्थान पर पहुंच गया। इस दौरान सड़क निर्माण के क्षेत्र में भारत ने 7 विश्व रिकॉर्ड भी कायम किए। गडकरी ने कहा कि बीते 9 वर्षों में टोल से मिलने वाला राजस्व भी 4,770 करोड़ रुपए से बढ़कर 41,382 करोड़ रुपए पहुँच चुका है। आवास वित्त कंपनी HDFC लिमिटेड का निजी क्षेत्र के HDFC बैंक के साथ विलय 1 जुलाई से प्रभावी होगा। HDFC के चेयरमैन दीपक पारेख ने मंगलवार को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस विलय प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए HDFC और HDFC बैंक के निदेशक मंडलों की 30 जून को बैठक होगी। पारेख ने कहा कि HDFC लिमिटेड का HDFC बैंक के साथ विलय 1 जुलाई से प्रभावी होगा। HDFC के वाइस चेयरमैन एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी KK मिस्त्री ने कहा कि कंपनी के शेयर की सूचीबद्धता समाप्त करने का काम 13 जुलाई से प्रभावी होगा। HDFC बैंक ने पिछले साल 4 अप्रैल को आवास वित्त कंपनी HDFC का खुद में विलय करने पर सहमति जताई थी। ये सौदा 40 अरब डॉलर का है। अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की एक धमाकेदार रिपोर्ट के चलते अरबों डॉलर गंवाने के 5 महीने बाद अडानी समूह ने एक बार फिर अपने कॉरपोरेट शासन और प्रकटीकरण मानकों पर भरोसा जताया। समूह की प्रमुख फर्म अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट में समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने कहा, उच्चतम न्यायालय की विशेषज्ञ समिति को कोई नियामक विफलता नहीं मिली। हिंडनबर्ग रिसर्च ने 24 जनवरी को अडानी पर शेयरों की कीमतों में हेराफेरी करने और खातों में धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। साथ ही शॉर्ट सेलर ने फर्जी कंपनियों के जरिए धन के गुप्त लेनदेन का आरोप भी लगाया। अडानी समूह ने इन आरोपों का दृढ़ता से खंडन किया और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को भारत पर एक सोचा समझा हमला बताया। वार्षिक रिपोर्ट में अडानी ने कहा कि अमेरिकी शॉर्ट सेलर ने हमारे गणतंत्र दिवस के अवसर पर रिपोर्ट प्रकाशित की। उन्होंने कहा कि इन आरोपों का मकसद समूह की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाकर और शेयर की कीमतों को जानबूझकर गिराकर मुनाफा कमाना था। उन्होंने कहा कि न्यायालय की समिति में ऐसे व्यक्ति शामिल थे जो अपनी स्वतंत्रता और ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। समिति को नियामक विफलता या किसी उल्लंघन का कोई उदाहरण नहीं मिला। टाटा मोटर्स की सहायक इकाई टाटा टेक्नोलॉजीज, गांधार ऑयल रिफाइनरी लिमिटेड और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी SBFC फाइनेंस को IPO के जरिए पूंजी जुटाने के लिए पूंजी बाजार नियामक SEBI की मंजूरी मिल गई। तीनों कंपनियों ने दिसंबर 2022 और मार्च 2023 के बीच SEBI के समक्ष आवेदन किए थे। उन्हें 21 से 23 जून के दौरान नियामक की मंजूरी मिली। मसौदा दस्तावेज के अनुसार टाटा टेक्नोलॉजीज का IPO पूरी तरह से बिक्री पेशकश के रूप में है, जहां कंपनी 9.57 करोड़ इक्विटी शेयर बेचेगी, जो उसकी चुकता शेयर पूंजी का लगभग 23.60% है। गांधार ऑयल रिफाइनरी के IPO में 357 करोड़ रुपए के इक्विटी शेयरों की ताजा पेशकश शामिल है, जबकि प्रवर्तक और मौजूदा शेयरधारक 1.2 करोड़ शेयर बेचेंगे। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।